الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہاں کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 200 برس تو ہم نے جینا ہی نہیں ہے. جہاں جہاں حدیثوں میں یہ جو کوانٹٹی آتی ہے نا, 100 برس, 200 برس, ایک اور حدیث پاک بھی ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو علماء یہ فرماتے ہیں اس سے مراد زندگی بھر کے گناہ ہوتے ہیں, یعنی کثرت سے رحمتیں نازل ہوں گی. اچھا, یہاں جب جب یہ 200 برس کے گناہ, 80 برس کے گناہ یا پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. یاد رکھیے, کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے, ہر روز کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں, اور توبہ کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. یقین کریں اللہ کو بڑا پسند ہے بندہ اس سے معافی مانگے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشے بخشائے ہیں, مگر آپ بھی روزانہ بعض روایتوں کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہم سراپا گناہگار ہیں, گناہوں کے انبار ہیں ہمارے سر پر, کتنا کتنا وقت گزر جاتا ہے ہم توبہ نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے. تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ یہ اپنی زبان پہ رکھیں. ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بھی ایک استغفار ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, پڑھتے رہا کریں, کم از کم 100 بار پڑھ لیں. کتنی دیر لگتی ہے, بلکہ مزہ پتہ کیا ہے, استغفار کرتے وقت اپنے ذہن میں اس کا معنی بھی رکھیں نا. معافی مانگنے والا ہنستے ہوئے معافی نہیں مانگتا. آپ معافی مانگ رہے ہیں نا, یا اللہ معاف کر دے, میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں, تو آپ کے دل کی کیفیت بھی ہو, آپ کے چہرے کی کیفیت بھی ہو. کیا ہی اچھا ہو آنکھیں بند کر کے مسجد کے کونے میں یا گھر میں بیٹھ کر میں اپنے گناہ یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہوں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, اپنے کرم سے معاف کر. پھر آنسو بھی بہیں گے, پھر خیال بھی آئے گا, پھر ندامت بھی ہوگی, پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کریم کیسا کرم فرماتا ہے. ایک روایت, بڑی طویل روایت ہے, کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بیان کریں گے کہ جب بندہ رب سے معافی مانگتا ہے نا, اللہ کریم اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ہے نا جملہ کتنا پیارا ہے. گناہ رب کے کیے, ناراض اس کو کیا, اور اب معافی مانگ رہے ہیں, معاف کر دے تو بڑی مہربانی ہے. فرمایا اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے رب, کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے کہ گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معافی مانگو تو معاف بھی کر دیتا ہے. کیا شان ہے میرے مالک کی, پھر بھی ہم معافی نہیں مانگتے. اچھا, یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں, جب بھی لفظ مسکرانا رب کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے, ہماری طرح چہرہ نہیں ہے اس کا. تو یہ جو مسکرانا ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ یوں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے, گویا اس کی وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے, اس کی رحمت اس پر برستی ہے. تو ہمیں استغفار جو ہے, توبہ جو ہے, وہ اپنی زندگی کا دستور بنانا چاہیے. کوشش کریں کہ روزانہ ایک پرٹیکولر تعداد میں استغفار کرتے رہا کریں. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ایک ٹاپک کنٹینیو کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کی باتیں کریں گے, قرآن پاک میں آنے والی آیتوں کو سمجھیں گے, اور ہم نے اس کے لیے کوشش کی کہ ہم پچھلے 2-3 بیانات میں ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جس میں رب کریم نے براہ راست ایمان والوں سے بات کی ہے. ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, او یو بلیورز. اچھا, یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے, और कौन फरमा रहा है? रब फरमा रहा है। अल्लाह हमसे बात करे तो हमें पता तो होना चाहिए हमसे क्या बात की है। दुनिया का मैसेज मिस ना हो जाए इसकी परवाह, अल्लाह का पैगाम मेरे लिए क्या है उसकी कोई परवाह नहीं होगी। तो वैसे तो हमें अलग से टाइम निकाल कर ये सारी आयतें पढ़ लेनी चाहिए। ये 89 के करीब आयतें हैं पूरे कुरान में जहां अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट बात की है, या अय्युहल्लदीन आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर। ठीक है, तो आज उसी में से एक आयत इंशाल्लाह हम समझते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, ये है पारा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 172। हम एक सीक्वेंस के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पहली दो आयतें हमने कवर कर ली थी, आज तीसरी आयत है और उसी तरतीब से है कि जिस तरह कुरान में पहले पारे दूसरे पारे उस तरह हम उसको लेकर चल रहे हैं। तो आज जो आयत है उसमें रब फरमाता है, या अय्युहल्लदीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, ए ईमान वालो हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। क्या खूबसूरत आयत है। यानी इस आयत में हमें दो चीजों की गाइडलाइन दी गई है। खाना क्या है? साफ सुथरी हलाल तैयब चीजें, और फिर फरमाया और अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। तो कुछ इस बारे में समझते हैं कि इसमें रब ने क्या फरमाया है। अब यहां पर इरशाद होता है, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को रिस्क हलाल और शुक्र इलाही अदा करने का हुक्म दिया है। हलाल और तैयब क्या चीज है? उससे मुराद वो चीज है जो खुद भी हलाल है, जैसे बकरे का गोश्त है, सब्जी दाल जो हम चीजें खाते हैं, और हासिल भी हलाल जरिए से की गई हो, जैसे तिजारत के जरिए हो, विरासत के जरिए हो, कोई तोहफा दे, चोरी रिश्वत डकैती वगैरह ना हो। अब यहां एक बात याद आ गई, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कुछ अरसा पहले देखी, एक बंदा कहता है बैरून मुल्क में वो कोई गोश्त बेचने वाला था या कोई खाने के सामान बेचने वाला था, तो वो कहता है मुसलमान जब भी मेरे पास आते हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि ये हलाल है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हलाल ज़बीहा गोश्त खाना ही जरूरी है, या जिस पैसे से हलाल गोश्त खरीद रहे हैं वो पैसा भी हलाल होना चाहिए? रिश्वत से कमाकर, झूठ से कमाकर, धोखे से कमाकर, डकैती और चोरी से कमाकर, अगवा बराए तावान करके उसका रैंसम, उसका किडनैप के पैसे लेकर अब मैं ढूंढने निकला हूं कि मुझे उन पैसों से हलाल गोश्त चाहिए? तो यकीनन गोश्त भी हलाल ढूंढना है, खाना भी हलाल ढूंढना है, मगर वो खाना भी हलाल पैसों से है। हम एक साइड पर तो बड़े मजबूत होते हैं, माद अल्लाह किसी भी मुसलमान को कह दें, हम पता नहीं कोई बिल्कुल ही ईमान से खाली हो जाए तो अलग बात है, वरना कितना ही बड़ा गुनाहगार हो उसको कहें भाई सुअर का गोश्त खिलाऊंगा आपको, वो क्या कहेगा? नहीं भाई हम मुसलमान नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है, हमारा ईमान स्ट्रांग होना चाहिए। है? किसी भी नाजायज और हराम गोश्त को नॉर्मली मुसलमान पता चल जाए फिर नहीं खाते। बहरहाल आजकल तो ये भी बड़ा मामला है, बोलने को जी भी नहीं चाह रहा कि ये भी एहतियात अब खत्म होती जा रही है, खास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, पहले तो एहतियात करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं बस ठीक है यार चलता है, थोड़ा सा पूछ लिया, हलाल लिखा हुआ है ना। अब आपको क्या बताएं कि हलाल तो थैलियों पर छपा हुआ होता है, उसको कुछ भी भर दें आप। हैं, कई चीजें ऐसी जिसमें हलाल लिखा हुआ होता है, जिसमें हलाल लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब पानी की बॉटल पर हलाल लिखा हुआ है, चिप्स के पैकेट पे हलाल लिखा हुआ है, बिस्किट के पैकेट पे हलाल लिखा, यानी आप जबीहा वाली चीज पर हलाल लिखें। अब तो हर, क्योंकि कुछ जगहों पर इंटरनेशनल कानून बन गया है कि हलाल की स्टैंप होगी तो हमारे मुल्क में आ सकेगा, तो हर चीज पर हलाल लिख दिया, लेकिन उस हलाल के पीछे वो हलाल है कि नहीं, थोड़ी बहुत मालूमात तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो फिक्र होनी चाहिए। कई मुल्कों में हलाल कहकर भी हराम बेचा जा रहा होता है, लेकिन लोगों को फिक्र नहीं है, बस ठीक है भूख लगी खाना खा लिया। हालांकि उनके लिए मशवरा ये है कि किसी भी मुल्क में जाकर आप पर मुर्गी और यह गोश्त खाना वाजिब नहीं है, आप सब्जी खा सकते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए एक ऐसी खुराक रखी है जिसका हलाल हराम का मसला नहीं है, ठीक है ना। आप जनाब उसमें फिश खा सकते हैं, लेकिन बस शौक भी बहुत है और फिक्र भी नहीं करनी है। लेकिन कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालो रिस्क हलाल खाना है, साफ सुथरी चीजें खानी है, हलाल तैयब रिस्क खाना है। तो बहरहाल ये बात हमें समझ आई, और रिस्क हलाल किस कदर बरकत वाला खाना है। और हराम खाना जो है वो अजाब इलाही को दावत देता है, चाहे वो हराम रोजी से खाया है या हराम गोश्त या हराम चीज़ खाई है, शराब पी है या माद अल्लाह वो गोश्त खाया जो ज़बीहा नहीं है, तो इसकी कितना बुरा काम है। अब ज़रा कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा वला तत्तबिऊ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान कहता है ऐ लोगो जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकिज़ा है उसमें से खाओ और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये बार बार कुरान कह रहा है हलाल खाना है, हलाल खाना है, हराम खाना ये सारी रूहानियत को बर्बाद कर देता है। याद रखिए, जिसके पेट में हराम का लुकमा जाए ना उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, लेकिन लोगों को ये फिक्र ही नहीं है। अच्छा मैं दोबारा वही बात करूंगा, मेरे सामने जो ऑडियंस है 99.99% लोग हराम खाना नहीं खाते। कौन सा हराम? जो पकने में हराम है या गोश्त हराम है। मगर क्या इतनी एहतियात मैं उस रोजी कमाने में कर रहा हूं कि जिस रोजी से जिस पैसे से मैं वो खाना खरीद रहा हूं, मैं खरीद तो हलाल बकरे का गोश्त रहा हूं, मैं खरीद तो हलाल सब्जी रहा हूं, मैं खरीद तो हलाल चिकन रहा हूं, मगर जिन पैसों से खरीद रहा हूं वो भी हलाल होने चाहिए ना, वरना तो खाना फिर हराम हो गया, रोजी फिर हराम हो गई। हम जितना कॉन्शियस, अगर आपको कोई कहे कि आपके मोहल्ले में एक गैर मुस्लिम है जो चिकन बेच रहा है, आप जाए नहीं लेंगे उससे? हैं, आम मुसलमान जो बेनमाजी है वो भी नहीं लेगा, पता चल जाए कि भाई ये माद अल्लाह हराम गोश्त है हम नहीं लेंगे, भाई ये फला चीज में शराब मिली हुई हम नहीं लेंगे जो शराबी नहीं है। लेकिन जितना कॉन्शियस खरीदारी में हराम को चेक करने में कुछ लोग होते हैं, हमें उसी तरह अपनी रोजी में भी तो एहतियात करनी है ना, कि मैं अपने बच्चों को कोई हराम रोजी तो नहीं खिला रहा हैं। मैं दो वाकयात आपको सुनाता हूं, हराम रोजी की तबाहकारी और हलाल रोजी की बरकत। पहले हलाल रोजी की बरकत सुनो। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु तआला, ये कौन से सहाबी हैं? ये अशराए मुबशरा में से हैं। अशराए मुबशरा कौन होते हैं? ये वो 10 सहाबा हैं जिनको नबी पाक ने उनकी जिंदगी ही में जन्नत की बशारत अता फरमा दी। वैसे तो हर सहाबी जन्नती है, मगर ये कितने लकी हैं कि ज़बाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे आका ने इनको जन्नत की बशारत अता फरमाई। अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं खुशखबरी वाले। ये वो 10 हैं कि जिनको इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई कि वो जिंदगी में ही नबी पाक ने फरमाया तुम जन्नती हो। हजरत साद बिन अबी वक्कास इज वन ऑफ देम। चार तो खुलफाए राशिदीन हैं हमारे, ठीक है, पांचवें ये हो गए, पांच मजीद भी हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बड़ा बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया। यकीन करें ऐसा सवाल है, मैं आपको बताऊं तो आप भी कहेंगे यार इसका जवाब फौरी बताइए। सवाल क्या था? वो कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाएं अल्लाह से, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुस्तजाबुद दावात? यानी बंदा जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल हो जाए। अब मुझे बताओ ये कितना बड़ा इनाम है। अगर ये हम में से किसी को मिल जाए तो सारे मसले हल हो गए ना, प्रॉब्लम होगी, बीमारी होगी, कर्जा होगा, वॉट एवर प्रॉब्लम, मैंने दुआ करनी है और मसला हल हो जाना है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावात। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया, कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतने सदके दो, इतना लंबा मुजाहिदा करो, फिर जाके तुम मुस्तजाबुद दावात बनोगे। नहीं, वन लाइनर आंसर फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ऐ साद अपनी खुराक पाक कर लो, मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। बस ये फॉर्मूला सीख जाइए। कुरान का पैगाम भी यही था, क्या ईमान वालों हलाल खाओ, और हलाल खाओगे तो मिलना क्या है? मुस्तजाबुद दावात बन जाएंगे, मसले हल हो गए ना। मैं क्यों जाऊंगा किसी और से दुआ कराने जब खुद ही मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं? तो अपनी गिजा पाकिजा करनी है, अपनी कमाई पाकिजा करें, अपना खाना पाकिजा करें, अपने लुकमे पाकिजा करें। और आगे नबी पाक फरमाते हैं उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता, और जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। हदीस में क्या फरमाया, जो गोश्त उगाई सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में चल जाने के लिए बेहतर है। हम नहीं सोचते, हम कहते हैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा जरा, बच्चों के मुस्तकबिल लिए कर रहा हूं। आप बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, जो हराम कमा कर कहते हैं मैं बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर रहा हूं, मैं इसलिए सूद लेता हूं, मैं इसलिए रिश्वत लेता हूं कि यार बच्चों का कुछ बन जाए। आप बेवकूफी कर रहे हैं। अल्लाह पाक मालिक है, कादिर है, वो थोड़े पैसे में भी बरकत डाल सकता है, और हलाल में वैसे ही बरकत रखी है उसने। मैं जनाजा पढ़ा के आ रहा हूं, मेरे फूफा जान का इंतकाल हुआ, आप दुआ करें अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। मगर मैं जनाजे में भी एक बात कहकर आया, मैंने कहा मेरे फूफा जान आज जा रहे हैं, मैं जानता हूं अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, मगर वो कब्र में एक रुपया भी लेकर नहीं जा रहे हैं। उनके कफन में कोई जेब नहीं था, जिस कब्र में आज वो जाएंगे कोई तिजोरी नहीं होगी, सारे पैसे सारी प्रॉपर्टियां सब पीछे छोड़ गए। और हम आप यही करेंगे ना, है कोई जो लेकर जाएगा अपना प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, है कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, एवरीथिंग सब पीछे रह जाएगा। जिसके लिए जिसको जमा करते करते हराम कमा कमा के जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचे कब्र में तो खाली आ जाना है, और फिर जो हराम छोड़कर जाएंगे उसकी मार अलग पड़नी है। मैंने बहुत पहले बयान में एक जुमला कहा था, आज फिर रिपीट करता हूं, अल्लाह करे किसी के दिल पे लग जाए। एक फॉर्मूला है, जितने भी यहां बैठे हैं मुझे बताएं, हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने कमाए हुए पैसे में अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं? पर्सनली अपने ऊपर गौर कीजिएगा, जितने भी बैठे हैं, जो नौकरी वाले भी हैं, जो बिजनेस वाले भी हैं, मैक्सिमम 5%। आप सोचिए, मर्द तो वैसे ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, बीवी पे खर्च कर रहा होता है, वो इतने कपड़े सिलवाते हैं, हम तो फिर भी नहीं सिलवाते, उनको हर दावत में नए कपड़े चाहिए, जूते नए चाहिए, पता नहीं कितने सामान चाहिए। मर्द, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, कमाते हम हैं, पर्सनल अपनी जात पर आपने जितने जिंदगी में कमाए आज तक, कभी बैठ के हिसाब कीजिएगा, 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा आप अपनी जात पे खर्च नहीं करते। या तो बच्चों पे खर्च करते हैं, या बीवी पे करते हैं, या माँ बाप पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब जुमला मेरा सुन लो, मैंने कमाने 100 हैं, खर्च 5 करने हैं, और जवाब 100 का देना है, ऐसा ही है ना। अगर हराम कमाया, 100 कमाए, 5 खर्च किए, मार 100 की पड़नी है, मजे कौन करेगा? फैमिली। मजे कौन करेगा? बच्चे, घर वाले, और मार मुझे पड़ रही है, तूने हराम क्यों कमाया? तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है यार, कि मैं क्यों 100 हराम के कमाऊं, जितने चाहिए उतने हलाल कमाऊं, रब ने हलाल देने, मैं क्यों मार खाऊं किसी और के लिए? अपनी जात पे खर्च भी नहीं कर पा रहे, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, ये और बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी, और बढ़ जाएगी, 40-40 साल से प्लॉट रखा है, बेच ही नहीं रहे, और बढ़ जाएगी प्लॉट, रह जाएगा आप कब्र में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता आप, लेकिन जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, खुदा ना खास्ता इस वजह से मार तो नहीं पड़ेगी, ज़कात पूरी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा, समझिए बात को। पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है, ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई, मेरा कुछ भी नहीं, मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे, वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं है, ये वो रसा के हैं। इतना बेवफा यार, मेरे साथ एक रुपया भी नहीं जाएगा, और मैं इसी पैसे के लिए भागी जा रहा हूं। आपको बताऊं, शरई मसला यह है कि अगर किसी बंदे का विसाल हो जाए, बेशक वो करोड़ों रुपए छोड़ के मरे, अब अगर उस बंदे के ईसाले सवाब के लिए कोई नेकी का काम करना है ना, तो वो भी उसके पैसों से नहीं कर सकते जब तक उसके वारिसों से ना पूछे। पैसा मेरा कमाया मैंने, मैं मर गया, मेरे ही सवाब के लिए मेरा पैसा खर्च नहीं हो सकता जब तक मेरे वारिस ना इजाजत देंगे। इतना बेवफा है ये पैसा। तो अकल क्या कहती है कि इसी पैसे को हलाल से कमाऊं, और अपनी जिंदगी में ही अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च करके जाऊं कि मैं कब्र में जाऊं तो मुझे कयामत तक सवाब मिलता रहे। अकलमंदी ये है, प्लान कीजिए अपने मरने का। लोग जीने का प्लान करते हैं, अकलमंद वो है जो मरने का प्लान करता है। जिंदगी तो वैसे ही गुजर गई, हम में से कितने सारे लोग हैं 30-40-50 साल के हो गए, और कितना जिएंगे भाई। अब प्लान करो मरने का, अब प्लान करो कब्र का, प्लान करो आखिरत का। और कुरान सिखा रहा है हलाल कमाना, ये प्लानिंग है आखिरत की।
और अगर अल्लाह ने दिया है तो उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि मैं रहूं ना रहूं मुझे कयामत तक सवाब मिलता रहे। और मुझे और आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है कि हम अपनी वसीयत कर सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर वेल्थ, एक तिहाई आप वसीयत करके जा सकते हैं कि मेरे मरने के बाद 1/3 पैसा मेरा जो है वो अल्लाह की राह में दिया है, फला मस्जिद में दे दें, फला तंजीम को दे दें, फला नेकी के काम में खर्च करें, यतीम खाने, कोई भी प्लान ऐसा करो आप, तो होगा क्या आपके मरने के बाद, पहले तो जिंदगी में जितना कर सकते हैं करें और फिर मरने के बाद भी वो पैसा, मेरा पैसा ऐसे काम में लगे जो मुझे कब्र में सवाब मिलता रहे, कयामत तक सवाब मिलता रहे। काश ये बात समझ आ जाए, वरना हम जानते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारे तो ये हमारी फील्ड है, हम किसी के इंतकाल के बाद घर जाते हैं, बाप अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, हम बच्चों से कहते भी हैं यार अब्बू ने इतना दिया है, अब्बू के नाम की कोई मस्जिद बना दो, कोई मदरसा बना दो, कोई कुआं खुदवा दो, देखते हैं जरा कारोबार पहले सेट हो जाए, पहले जरा प्रॉपर्टी का मामला हल हो जाए, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, 2-4-6 महीने बाद अब्बा बेचारे कब्र में हैं और बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। वो बाप जिसने सब कुछ इनके लिए किया, औलाद ना होने के बराबर करती है। खुश नसीब है वो औलाद जो माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन जो नहीं करते तो उन माँ बाप को अकल होनी चाहिए कि मेरी औलाद आज दीन की तरफ नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ रही, मेरे मरने के बाद क्या करेगी, मैं खुद कर जाऊं ना अपने लिए, अपनी फिक्र खुद कीजिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हराम रोजी से बचना है। मैंने हलाल की फजीलत बताई कि मुस्तजाबुद दावत बनने का फार्मूला नबी पाक ने क्या फरमाया कि ऐ साद अपनी गिजा पाकिजा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत हो जाओगे। अगर आप भी चाहते हैं ना आपकी दुआएं कबूल हो, कई लोग कहते हैं, मिलते भी हैं, हजरत दुआ कबूल नहीं होती, जिसको काबे के सामने भी दुआ की, हमने मदीने में भी दुआ की, फला जगह भी दुआ कराई, दुआ कबूल नहीं होती। चेक कीजिए रोजी हलाल है या हराम है। एक और वाक्या सुनाता हूं, हजरत मूसा अला नबी ना वाली सलातु वस्सलाम ने एक बार एक शख्स को देखा, वो बड़ा रो रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। अच्छा, हजरत मूसा तो कलीमुल्ला है ना, आप तो अल्लाह से बात करते थे, आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला ये बंदा इतना रो रहा है, इसकी दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ए मूसा ये इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं, ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी है। हजरत मूसा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है, ये रोते रोते मर जाए, हाथ आसमान तक बुलंद कर ले, इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। कह या अल्लाह रीजन क्या है, वजह क्या है? इरशाद फरमाया, ए मूसा जो ये पहनता है वो हराम है, जो वो खाता है वो हराम है, जो कमाता है वो हराम है। तो काबे पर जाना, मदीने जाना, मखसूस और मुबारक अय्याम और औकात में दुआ करना जब ही कबूल होगा जब रोजी हलाल होगी। हम इस फॉर्मूले को भूल रहे हैं, हमें ये यकीन करना होगा कि मेरा रब हलाल रोजी में बरकत डालने पर कादिर है। हमें ये इत्मीनान लाना होगा, हम समझते यार हराम नहीं कमाऊंगा तो पीछे रह जाऊंगा, सब आगे बढ़ गए मैं पीछे रह गया, मेरा बंगला कैसे बनेगा। अरे भाई, बंगला बना हुआ है मगर सुकून नहीं है तो क्या करना है उस बंगले का। हम जानते हैं इस करोड़ अरबपति को, पैसे बहुत है, खाना नहीं खा सकते हैं, डॉक्टरों ने बना कर दिया है, वो अपना वॉशरूम नहीं कर सकते, तो क्या पैसा ही सब कुछ है? आपको अल्लाह ने पैसा नहीं दिया, सेहत दी है। खुदा की कसम, अब तो दुनिया के भर के लोग कहते हैं कि सेहत से बढ़कर वेल्थ ही कोई नहीं है। आपका ज़हनी सुकून, पीस ऑफ माइंड, ये सबसे बड़ी दौलत है। हम कहते नहीं पैसा चाहिए, हराम से आ जाए, किसी तरह आ जाए। कई पैसे कमाने, हराम कमाने वालों को देखकर रात सोते नहीं है, उनको टेबलेट के बगैर नींद नहीं आती, डिप्रेशन अलग चल रहा है उनका। अरे क्या करने ऐसे पैसे को, आप सुकून की नींद सोते हो, इससे अच्छी कौन सी नेमत है? हमने अपनी जिंदगी के फॉर्मूले अलग बना लिए, हमारी नजर में वेल्थ और है। अब तो ये तो हदीसों से हमने सीखा ना, अब तो ये मोटिवेशनल स्पीकर कह लें या जनाब बड़े बड़े जिसको रिसर्च करने वाले कहते हैं, वेल्थ है ही 5 किस्म की, सिर्फ पैसा वेल्थ है ही नहीं, सेहत वेल्थ है, पीस ऑफ माइंड है वेल्थ है, हैं आपकी अच्छी फैमिली आपका वेल्थ है, रिलेशनशिप आपका वेल्थ है, आपके साथ दोस्ती कोई नहीं है, आप छुपते फिर रहे हराम कमाकर, आप पुलिस आपको अलग ढूंढ रही है, टैक्स वाले अलग ढूंढ रहे हैं, आप अलग टेंशन में है, किस काम का ये पैसा? मैं अपने बच्चों के साथ हूं, अपनी फैमिली के साथ हूं। कई अरबोंपति लोग हैं जो अपने वतन में नहीं आ सकते, अपने मोहल्ले में नहीं जा सकते, अपने ऑफिस पे नहीं बैठ सकते, क्या करना है इस पैसे को? हमने पता नहीं कौन से फॉर्मूले बना लिए कि यार सुकून नहीं है। सुकून असल में आप दूर हैं इसलिए आपको पता नहीं है, जो लोग कनेक्टेड है उनसे पूछे कि मालदारों के गम और हैं, गरीबों के गम और हैं, ये जो बंदा समझता है ना यार मैं दुखी हूं बाकी सारे सुखी हैं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा याद रखें हलाल में बरकत है, हलाल कमाना है। अच्छा थोड़ा भी मिला और रब राजी हो गया। एक रिवायत सुना देता हूं, चले बयान के आखिर में, इतनी खूबसूरत रिवायत है, यकीन करें वन ऑफ द अमेजिंग हदीस है। खास तौर पर जो ये भागम भाग करते हैं ना पैसों के लिए, और पैसा नहीं मिलता तो जनाब उसके बाद परेशान रहते हैं, जरा हदीस सुनिएगा। इस हदीस के रावी भी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन रदिया मिनल्लाहि बिल यसीरी मिनर रिस्क। क्या फरमाते हैं? जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, पैसे थोड़े मिले रिस्क थोड़ा मिला, सुनो आका फरमाते हैं जो अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएगा, रदियल्लाहु मिन्हु बिल कलील मिन अमली, अल्लाह पाक उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। इसको इंजॉय अगर इसको समझ गए ना आप, इसकी एसेंस को समझ गए, ऐ गरीबों तुम्हें मुबारक हो, मगर राजी रहना है। ये नहीं कि गुर्बत भी है और शिकवे भी हैं, गुर्बत भी है और कंप्लेन भी है, नहीं, पैसे थोड़े आ रहे हैं मगर बंदा दिल से राजी है। मगर इनाम क्या है, खुदा की कसम ये सौदा महंगा नहीं है। मैं अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर राजी हो जाऊं और मेरा करीम मेरे थोड़े अमल पर राजी हो जाए, क्योंकि वो राजी हो गया ना फिर जन्नत है। घर नहीं मिला दुनिया में बड़ा, मगर जन्नत ना खत्म होने वाली है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इधर पैसे नहीं मिले, जन्नतियों के लिए हीरे जवाहरात हैं। इधर जनाब लग्जरीज नहीं मिली, मैं अल्लाह की रिजा पर राजी हूं, जन्नत की नेमतें वो हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, तुम्हें मुबारक हो। और जो जनाब अब इसका जरा मफहूम मुखालिफ भी तो समझो ना, कि जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, सोचो क्या फरमाया, जो अल्लाह के थोड़े रिस्क पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। तो जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया और कयामत के दिन अमल ज्यादा मांगा तो फिर हमारा क्या बनेगा? है हमारे पास जवाब? अमल है हमारा ज्यादा? बल्कि इधर तो मामला और उल्टा है, गरीब आदमी ज्यादा नेकियां कर रहा है नॉर्मली, और अमीर आदमी जिसको अल्लाह ने बहुत नवाजा वो और नेकियों से दूर हो गया। होना क्या चाहिए था कि जितना अल्लाह अता फरमाता उतना मैं और इबादत करता और शुक्र करता और सजदे करता, इधर तो मामला ही उल्टा है, वो अताएं बढ़ा रहा है हम खताएं बढ़ा रहे हैं। जवाब नहीं देना, काश ये बात समझ आ जाए। तो आज कुरान पाक की इस आयत के तहत हमने समझना है, तो मैं वो आयत दोबारा पढ़ देता हूं जो आज हमारे बयान का टॉपिक थी, कि अल्लाह करीम ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया ये हमें समझना है और उस पर अमल करना है। रब्बे करीम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीजें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। तो हलाल रोजी पर बात हुई और फिर कुरान कहता है शुक्र भी अदा करना है, नाशुक्री नहीं करनी है, अल्लाह को नाशुक्री बहुत नापसंद है। खुद कुरान में रब फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि और मिल जाए तो शुक्र अदा करें। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत के दिन कहा जाएगा हम्द करने वाले खड़े हो जाएं, लोगों का एक गुरु खड़ा हो जाएगा, उनके लिए झंडा लगाया जाएगा, वो तमाम जन्नत में जाएंगे। पूछा गया या रसूल अल्लाह हम्द करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया जो लोग हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐसे आसानी से वो जन्नत में जाएंगे। तो शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें, जबान से शुक्र भी अदा करें, अपने आज़ा से भी शुक्र अदा करें। आखिरी बात कह देता हूं, कुछ लोग या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते नजर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर याद रखिए सिर्फ जबान का शुक्र नहीं है, आंख का शुक्र यह है कि आंख हराम ना देखे, जबान का शुक्र यह है कि जबान हराम ना बोले, अपने हाथों का शुक्र यह है कि ये हाथ हराम कामों की तरफ ना बढ़े। अल्लाह ने हाथ दिए ना, जिस रब ने दिए उसी की नाफरमानी में हमारे हाथ चलेंगे, जबान चलेगी, आंखें चलेंगे, कान चलेंगे, नहीं, पूरी बॉडी का शुक्र अदा करें ना कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे नेमतें दी हैं, अब इन नेमतों को तेरी नाफरमानी में खर्च नहीं करूंगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने शुक्रगुजार बंदों में बना दे, ना शुक्री से हम सबको महफूज फरमाए। इस ना शुक्री को सिर्फ इस तरह समझ लीजिए कि आपका कोई बेटा हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई मुलाजिम हो, और वो आपको बार बार कहे कि साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, अब्बू आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, ये तो जबान का शुक्र हो गया, और आप अपने बेटे को कहें बेटा जरा ये काम करो, कहा ये काम मैं नहीं करूंगा आपका मगर आपका बहुत शुक्रिया, बेटा इधर मत जाना, अब्बू जाऊंगा तो उधर मगर आपका बहुत शुक्रिया, बेटा कल ये आपने मेरा काम करके देना है, अब्बू काम नहीं करूंगा आपका बहुत शुक्रिया, तो आप क्या कहेंगे ये कैसा शुक्रिया है, जबान से शुक्रिया कहता है बात मेरी कोई नहीं मानता। तो हम अल्लाह की बात मान रहे हैं, शरीयत की बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, शुक्र जबान से कह रहे हैं, तो मजा यह है कि मेरी जबान भी शुक्र करे, मेरी बॉडी भी शुक्र करे, अल्लाह की इताअत के साथ में जिंदगी गुजारूं। सल्लु अलल हबीब।